ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की तीन दिन की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हो गए। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ तथा बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तो वे सुल्तान हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सियेन लूंग और वरिष्ठ नेता गुह चोक तोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। श्री मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड से सभी करों सहित 26,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ भारतीय श्रेणी में क्रय के वर्ग में स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि अवसंरचना निधि AIF उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कल मेडिकल प्रतिष्ठान में वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी उनसे पिछले महीने महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या तथा अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ कर रही थी। भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान कल रात राजस्थान के बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने कहा कि लड़ाकू विमान में रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आई जिसके बाद पायलट को विमान से निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस मामले में वायुसेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर यातायात को बाधा रहित बनाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर पर लाइव निगरानी के लिए लगभग 100 टोल प्लाजा की पहचान की है। टोल प्लाजा के नाम और स्थान के अलावा वेब सॉफ्टवेयर जिन विवरणों को साझा करेगा उनमें वाहनों की कतार की लंबाई, कुल प्रतीक्षा समय और टोल प्लाजा पर वाहन की गति की लाइव स्थिति शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों श्रीलंका में 64वें पास पड़ोस सामरिक अध्ययन दौरे पर है। इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध सुदृढ़ करने के लिए श्रीलंका के सैन्य अधिकारियों से भेंट की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।